हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आखिर वो दिन आ ही गया था जब ध्रुव और तारा की शादी होनी थी। पूरे राणा मेंशन में खुशियों का माहौल था। हर कोई अपने अपने कमरे में तैयारी करने में लगा हुआ था, क्योंकि थोड़ी ही देर में शादी का इवेंट शुरू होने वाला था। सबको शादी की खुशी हो रही थी, तो वहीं तारा इस बात को देखकर परेशान थी कि कहीं मौलिक का प्लान फेल हो गया तो उसे ध्रुव से शादी करनी पड़ेगी, और फिर न जाने वो बदला लेने के लिए उसके साथ क्या करेगा। तारा परेशानी में चहलकदमी कर रही थी। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट की टीम भी उसके कमरे में पहुंचने वाली थी। बस तारा को अपनी तरफ से तैयारी करनी थी। मिस्टर मल्होत्रा का प्लान काम तो करेगा ना? नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। वैसे भी सुबह से इस बारे में सोच सोच के सरदर्द होने लगा है। उससे दूर जाते ही मेरे दिल में उसके लिए थोड़े बहुत भी इमोशंस हैं, वो खत्म हो जाएंगे। वो भी तो ये शादी नहीं करना चाहता है, फिर मेरा दिल इतना जोर से धड़क क्यों रहा है? जैसे मैं शादी से भागकर कोई गलत डिसीजन ले रही हूँ, तारा ने परेशान स्वर में कहा। शादी की रस्में शाम से शुरू होनी थी, इसीलिए वो अपने कमरे में सुबह से अकेली थी। बीच में एक बार अलीशा उससे मिलने के लिए आई थी। अकेलेपन में तारा बार बार इसी चीज को लेकर बेचैन हो रही थी कि आज शाम क्या होने वाला है। तारा की इसी बेचैनी के बीच कमरे पर किसी की आहट हुई। तारा को लगा कि मेकअप आर्टिस्ट की टीम आई होगी। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा उसके खोलने से पहले ही खुल गया। तारा के कदम वहीं पर रुक गए थे और वो खुद से बड़बड़ाकर बोली, राणा फैमिली का कोई शख्स आया है। तारा तुरंत दूसरी तरफ पलट गई थी। वो खुद को सामान्य करने लगी। राणा फैमिली के लोग ही अपने फिंगरप्रिंट से किसी भी रूम को अनलॉक कर सकते थे। अगर मेकअप आर्टिस्ट की टीम आती तो तारा को दरवाज़ा खोलना पड़ता। कुछ सेकंड्स बाद तारा ने पलटकर देखा तो सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। क्या है इसमें? तारा ने हैरानी से पूछा। मेरी दुल्हन बनने जा रही हो और इस बात का ख्याल भी नहीं कि शादी का जोड़ा तुम तक पहुंचा है या नहीं? तुम्हें फिक्र क्यों होगी? तुम्हें तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है ना? आखिर भागने के प्लान में ये हैवी जोड़ा तुम्हारे पैरों में बेड़ियां जो बनने वाला है, तारा अग्निहोत्री, ध्रुव ने तंज भरे लहजे में कहा। ध्रुव की बात सुनकर तारा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करता था जैसे उसे सब पता हो। एक पल के लिए तारा को लगा कि कहीं ध्रुव उसका प्लान जान तो नहीं गया है। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर ध्रुव हल्का सा हंसा और उसके पास बढ़ते हुए बोला, खोलकर नहीं देखना चाहोगी? खास तुम्हारे लिए मैंने घंटों वेस्ट करके इसे डिज़ाइन करवाया है। तुम रख दो, तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने आप देख लूंगी, तारा ने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसे मेरी आंखों के सामने खोलकर देखो। मेरी मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करना चाहोगी? सोचो मेरे कितने इमोशंस छुपे होंगे इसे डिज़ाइन करवाते हुए, ध्रुव ने थोड़ा ड्रामेटिक वे में कहा। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट की टीम आने वाली थी। ऐसे में तारा ध्रुव से उलझकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसकी इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर क्या फ़र्क पड़ता था कि ध्रुव उसके लिए कुछ भी लेकर आए। तारा ने इरिटेट होकर गहरी सांस ली। जैसे ही उसने बॉक्स खोला उसे एक झटका सा लगा, तो वहीं ध्रुव के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो शादी से भागने वाली थी। यहां तक कि अब तक तारा खुद को यही समझा रही थी कि उसके दिल में ध्रुव को लेकर कुछ इमोशंस नहीं बचे हैं, पर जैसे ही उसने वो शादी का जोड़ा देखा तारा की गुस्से से मुठ्ठियां कस गई थीं। तारा जल्दी से ध्रुव की तरफ पलटी और चिल्लाकर बोली, ये क्या मजाक है? तुम अच्छे से जानते हो इंडियन वेडिंग्स में वाइट पहनना ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। ठीक है, आजकल की ब्राइड्स पेस्टल कलर सेलेक्ट करती हैं, लेकिन वाइट कलर कोई नहीं पहनती है। ध्रुव तारा के लिए बिल्कुल सफेद रंग का जोड़ा लेकर आया था, हालांकि उस पर मोतियों और रोज गोल्ड का बहुत सुंदर काम किया हुआ था, पर वो सफेद रंग देखकर ही तारा गुस्से से लाल हो गई थी। तुमने सही कहा, हर रंग का एक अपना मतलब होता है। जैसे लाल रंग प्यार और सौभाग्य के लिए पहना जाता है, तो इंडिया में जब किसी औरत का पति मर जाता है तो एक बार के लिए उसे सफेद रंग पहनना पड़ता है। हमारा रिश्ता भी तो कुछ ऐसा ही है। कहने को ये शादी हो रही है लेकिन इसके अंदर का प्यार मर चुका है। तुम किसी गलत फहमी में ना रहो इसीलिए ये याद दिलाने आया हूँ कि ये शादी सिर्फ मैं डैड के कहने और अपने मकसद के चलते कर रहा हूँ। बाकी ये समझ लेना कि ये शादी होने से पहले ही तुम्हारा पति मर गया है, और उसके इमोशंस तो तुमने बहुत पहले ही मार दिए थे, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा और फिर वहां से चला गया। तारा का मन किया कि वो उस शादी के जोड़े को आग लगा दे। उसने आंखें बंद करके गुस्से में बड़बड़ा कर कहा, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो?
जब सब पता होता है तो ये भी अच्छे से पता होगा कि मेरा यूज किया गया था। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं तुमसे, तारा बोलते हुए रुक गई। वो अपनी बात खुद पूरी नहीं करना चाहती थी और उसकी आंखों से आंसू का कतरा बह गया। तारा उस जोड़े को देखकर सुबक रही थी, तभी कमरे के अंदर योग आया। उसने तारा को सफेद जोड़े के साथ देखा तो वो सब समझ गया था। योग ने आईज रोल की और तारा के सफेद जोड़े के ऊपर एक खूबसूरत लाल रंग का हैवी दुपट्टा रख दिया। इसी के साथ तारा ने जल्दी से सामने देखा। उससे इसी बेवकूफी की उम्मीद थी, क्या कर सकते हैं। कुछ चीजें उसे जीन्स में मिली हैं और उनमें से एक ये है कि अगर कोई उसे हर्ट कर दे तो वो आसानी से सामने वाले को माफ नहीं करता है, युग ने तारा को समझाते हुए कहा। जब आप अच्छे से जानते हैं कि वो मुझे माफ नहीं करेगा और मेरी गलती इतनी बड़ी है कि मैं खुद उम्मीद नहीं करती कि वो मुझे कभी माफ करे, तो फिर क्यों आप हमारी शादी करवा रहे हैं। प्लीज वो माफिया प्रिंसेस वाला एक्सक्यूज मत दीजिएगा, बिना शादी के भी आपका काम हो सकता है, तारा ने भारी आवाज में कहा। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी भी नहीं समझता, हाँ इतना कह सकता हूँ मेरे होते हुए तुम्हारे रिश्ते को मरने नहीं दूंगा और ये मेरे तरफ से गिफ्ट किए हुए दुपट्टे से तुम समझ सकती हो, बी हैप्पी, युग ने बिना किसी भाव के कहा और तारा के सिर को प्यार से सहलाया। तारा हैरानी से युग की तरफ देखने लगी। उसने अब तक युग के बारे में यही सुना था कि वो एक कोल्ड हार्टेड डेविल है जिसे अपनी फैमिली के अलावा किसी से कोई मतलब नहीं, और ये फैमिली भी उसकी लाइफ में काफी बाद में आई थी। उससे पहले किसी ने गलती से भी युग का सॉफ्ट साइड नहीं देखा था। तारा को समझ नहीं आया कि आखिर योग उसका फेवर क्यों कर रहा है, जबकि उसकी जगह कोई और कृषा को छोटी सी खरोच भी दे देता तो वो उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। ऊपर से कृषा को छोटी खरोच नहीं आई थी, बात उसकी जान पर बनाई थी। ऐसे मत देखो, युग ने जल्दी से तारा के सिर से हाथ हटाकर कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, उस दिन भी समझाया था, आज फिर समझा रहा हूँ, धोखा देना ऑप्शन में ही नहीं है। अपनी बात खत्म करके युग वहां से चला गया, जबकि तारा उसे जाते हुए हैरानी से देख रही थी। वो धीरे से बोली, ध्रुव और मिस्टर राणा दोनों ही काफी कॉन्फिडेंट होकर बात करते हैं, जिससे सामने वाले को लगता है कि वो पकड़ा गया है। ये दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने तारा अग्निहोत्री है। मैं इनकी बातों के जाल में फंसने वाली नहीं हूँ।
तारा ने युग की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो भूल गई थी कि वो युग राणा है। अगर उसने ध्रुव और उनकी जिंदगी में कदम भी रखा था तो वो उसकी मर्जी से रखा था। कुछ ही देर में मेकअप आर्टिस्ट की टीम आ गई थी। तारा का सफेद जोड़ा देखकर वे भी हैरान थे, लेकिन साथ में लाल दुपट्टा होने की वजह से उन्हें लगा कि तारा ने ही ये जोड़ा सिलेक्ट किया होगा। उनकी अजीब नज़रों को समझते हुए तारा बोली, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। मिस्टर मल्होत्रा ने तुम्हें समझा दिया होगा कि मेरी हेल्प कैसे करनी है। हाँ बिल्कुल, हमारा काम होते ही हमें यहाँ से भेज दिया जाएगा। मैं तो कहती हूँ आप तैयार होने का झंझट भी मत लीजिए, हम कह देंगे कि ब्राइड तैयार हो गई है और आपको साथ लेकर चले जाएंगे, उनमें से एक लड़की बोली। नहीं, ऐसा करने पर तुम पकड़ी जा सकती हो, यहाँ बीच में कोई भी आ सकता है, अपना काम शुरू करो, तारा ने उन्हें समझाया। तारा के कहने पर मेकअप आर्टिस्ट ने उसे तैयार करना शुरू कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने पेस्टल पिंक कलर की शेरवानी पहनी थी। तैयार होने के बाद ध्रुव ने उसकी हेल्प कर रहे हेल्पर को बाहर भेज दिया था। वहीं उनके जाने के साथ कृषा ने कमरे के अंदर दस्तक दी। कृषा को देखकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। हमेशा की तरह बिना किसी एक्स्ट्रा तामझाम के भी वो खूबसूरत लग रही थी। कृषा ने गोल्डन कलर का लहंगा पहना था जिसके साथ लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज था। पीछे बालों को चोटी बनाकर डेकोरेट किया गया था। कहीं ऐसा ना हो आपको देखकर डैड के इरादे बदल जाएं और वो फिर से आपसे शादी करने के बारे में सोचे, वैसे भी सब कुछ तैयार ही है, ध्रुव ने कृषा की तरफ बढ़ते हुए कहा और उसके फोरहेड पर हल्का सा किस कर दिया। वैसे इरादा बुरा नहीं है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तब तुम्हारी तरह मेरा मूड भी ऐसा ही सड़ा हुआ था और मैं ये सोच रही थी कि कैसे भी करके इस शादी से भाग जाऊं, कृषा ने हंसकर जवाब दिया। तब तो मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करना चाहिए, क्योंकि तारा के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही ख्याल चल रहे हैं, ध्रुव ने हल्के तरीके से जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है, युग राणा के होते किसी के प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं, कृषा ने सिर हिलाकर कहा, जिस पर ध्रुव ने लाचारी से अपने कंधे उचका दिए। नॉट इवन इन ड्रीम्स, ध्रुव ने जवाब दिया। तारा से मिलने के बाद योग उनके पास ही आ रहा था। उसने ध्रुव और कृषा की बातें सुनी तो वो अंदर आते हुए बोला, जब मेरे बेटे और मेरी वाइफ को मुझसे इतनी उम्मीदें हैं तो मैं उन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकता ना, उसके फेस पर इवन स्माइल थी। बेशक, क्या सोचा है आपने, वो जरूर कुछ करने की कोशिश करेगी, ध्रुव ने गंभीर आवाज में पूछा। योग के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी सीरियस हो गए थे। उसने कुछ पल रुककर कहा, फिर ठीक है, वो जो करना चाहती है उसे करने देते हैं। लेकिन युग, कृषा ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन युग ने उसकी बात सुनकर नामे सिर हिला दिया। खेल खेलने का मजा तभी आता है जब सामने वाले को लगे कि वो जीत रहा है, उसे आखिर तक जीतने देना चाहिए। आखिरी मोमेंट पर मिली हार और जीत दोनों ही दिमाग पर एक अलग छाप छोड़ते हैं,
बस देखना ये है कि मेरे एक बार फिर समझाने पर भी वो देवकूफी करती है या नहीं, युग ने जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि राणा मेंशन में किसके बीच क्या चल रहा था वो युग से छुपा हुआ था। बस तारा इस गलतफहमी में जी रही थी कि वो युग की नाक के नीचे से शादी से चली जाएगी। लगभग 8 बजे के करीब तारा तैयार हो चुकी थी। उसके पास बीच में मिलने के लिए कोई नहीं आया और इस बीच हेड मेकअप आर्टिस्ट ने बाहर जाकर सारा से अपना चेक लिया और वो वहां से जाने के लिए तैयार थी। उनके साथ तारा भी थी, जिसने अपनी शादी के जोड़े के ऊपर बुरखा पहन रखा था। प्लीज भगवान कि एक बार यहां से निकल जाऊं, उसके बाद आई प्रॉमिस कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस एक बार साथ दे दीजिए, तारा ने मन ही मन प्रार्थना की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तारा मेकअप आर्टिस्ट के साथ पार्किंग एरिया में पहुंच गई थी और वो गाड़ी में भी बैठ चुकी थी। वो गाड़ी मौलिक ने ही अरेंज करवाई थी जो उसे उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने वाली थी। गाड़ी के अंदर आते ही तारा ने राहत की सांस ली और बुरखा निकालकर फेंक दिया। आखिरकार वो उस शादी से निकल गई थी और अब उसे अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी थी। क्या लगता है, तारा सच में निकल गई है या ये किसी तरह का जाल है? चलिए ये तो अगले पार्ट में पता चल जाएगा। आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।